And we have a gathering here, and next gathering is a sign. About 70 Kirgiz brothers gathered here. The next gathering is February 19th, and Kash Jamaat will go, inshallah.
After the first lockdown, when everything was closed and when things opened up a little bit and started to open up, so alhamdulillah, our Jamaat was the first one to start the Khuruj, including Nazir Bhai, Sabir Bhai, myself, Ikram Bhai, Abul Wafa Sahab, and Brother Asif Bhai, they joined later. And those five from Jamaat Masjid, alhamdulillah, 5 to 6 brothers, we started Khuruj. And we were stationed here in Masjid al-Nur because it was the very early days and there was no movement. So initially, we worked in two phases actually. So our first phase, as per the Mashwara of the responsible brother and the Mashwara of Misha. So in our first phase was actually to go and meet our own brothers, like our old workers in Chicago, because there was a whole 5-6 months of total discontinuity as far as the physically coming to Masjid al-Nur is concerned. Anyhow, the Mashwara was happening anyhow, even before that in houses, but as far as the Markaz is concerned, it was not taking place in a regular fashion. So as a first phase, with Mashwara, it was decided that we will go to all areas of the city of Chicago, including city and all the suburbs. And in the first round, we went to individuals, all our old workers. We tried to approach, majority of them. Wherever we can physically go, we went physically there, we met one-on-one. If not, then we kind of contacted them by phone and whatever the other means we had. So this was our first round. It took us 10 to 15 days to cover pretty much majority of the city of Chicago. And in the second phase, it was decided with the Mashwara that we will be conducting jorts, so that the discontinuity that happened, so the brothers can also come back into the loop, and that coming and back and forth from the masjid and participating in the Mashwara and the weekend gathering, so it can start happening. So alhamdulillah, the second phase we conducted about 8 jorts, from dividing the whole city into smaller units, so that we don't have big gathering here, so we can follow the social distancing and all the rules, alhamdulillah. So we had for each jor, so for example, we had a jor for this plains area, including NBC, then we had a jor for, for the western suburbs, then towards, in this way we divided, and then for the city, we divided it into 2 parts. So alhamdulillah, in each jor, the average was about 20 to 25 mashallah brothers came up. So overall, whatever we were perceiving, before we started, that we would not get a good response. But alhamdulillah, as Adil Bhai also shared the same experience. So the response was pretty good. Alhamdulillah, we were thinking because we ourselves were kind of scared inside. But with the barakat of the khuruj and with the barakat of the mashwara, Allah subhanahu wa ta'ala opened everything. So alhamdulillah, the jors happened here. Ikram was done, and then azayn were taken from those brothers, So when they will be spending time and doing khuruj and coming to the mashwara, in this way we conducted all those jors, and total of about 225 to 250 total number of brothers who attended those jors, cumulative. So this was the brief karagazari, and the benefit of this khuruj for our own selves was primarily because we were also kind of affectees of the ahwal around us. But once we ourselves came out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so then the fear of the ahwal, it went out of our hearts, and because we got connected to the amal. So this is the barakah of the khuruj, and I think this is something then it carried on, alhamdulillah. And the markaz got also populated, and after, as we were kind of finishing, the more brothers came in. Then Abul Wafa Sahab, Asif Bhai, and I think Faisal Bhai, Many, you know, another Jamaat came into existence that station that was also stationed in Masjid An-Nur. So it, in continuity, mashallah, for many months, our masjid, I think it's still, mashallah, we have brothers who were here stationed, here doing the fikr of the whole of the city.
Mashallah, brother, the Jamaat did a great job, and in the city of Chicago, there are so many old workers. So because of this pandemic, everybody was furious. And mashallah, because of their effort, they came out from the cocoon. They came out, and mashallah, their iman grew, and they was in the part of the amal. Allah subhanahu wa ta'ala accepted them, and they tashkeel the whole city. And that's the reason the Jamaat after Jamaat went in the path of Allah. May Allah give them a lot of budget. Third karguzari, this was a karguzari local. One Jamaat karguzari. There are many, we don't have time, so only we selected three people. Ladies Jamaat 40 days, ladies of Masura Jamaat went for 40 days in the path of Allah. Can you imagine? In pandemic, the peak of the pandemic, they were in the path of Allah.
Alhamdulillah, by the fadl of Allah, our Jamaat was prepared in the city of Chicago here. Initially, as you know, that the Masura Jamaat is very difficult to form, especially for 40 days. What had happened was, just to not to show off or anything, but I just want to give a karguzari that, I had 3 months of vacation. I had put my vacation already and the pandemic started. And now you can't go back on your vacation. So you have to spend your time. So Alhamdulillah, initially the mashwara was that, okay, everybody does itikaf in their houses. Everybody will do itikaf in their houses. So we were doing itikaf, the month of Ramzan started. There were still lockdowns, masjids were closed. We were doing itikaf in the houses, and then mashwara was happening in the basement of Umar Bhai and several brothers' houses. Mashwara was happening every week. So Alhamdulillah, we used to keep meeting like that. And different avenues, Amir Sahib was also putting it in front of everybody. Alhamdulillah, anybody is making intention to go out in the path of Allah. So we all kept making intentions, but we were not seeing, any ray of light to go out. We were just waiting and waiting and waiting. Then what happened was, Amir Sahib put the taqaza in front of everybody that who's ready for 10 days itikaf. We said, Alhamdulillah, we are ready, inshallah, because none of the masjids were open. So who's ready to do itikaf? We are ready to do itikaf, Alhamdulillah, four of us, Abu by myself and two other brothers, Alhamdulillah, we did itikaf in Jami Masjid. And Alhamdulillah, every night we used to do fikr, how can the masajids open? Some satis, mashallah, they put this from, in front of everybody, that how do the fikr during your itikaf in these blessed nights of Ramadan, last 10 days, that how can the masajids open up? How can we go out in the path of Allah? Ask about your own jamaats. In my house also, when I was saying, are we going, are we not going? What's happening? So I said, I don't know, you ask Allah. We will also ask Allah. We do also ask Allah. So 2 months of my vacation, it was, spent like this in this way. And then what happened, Alhamdulillah, we kept presenting, that the jamaat can go in this way. Then slowly the restrictions started opening up. And they said that, 10 people can gather. Right after Ramadan, on the brink of Eid, an announcement was made, that all the religious institutions can open up. None of the religious institutions should be closed. So Alhamdulillah, we started getting some motivation. Alhamdulillah, those brothers who were ready to go out in the path of Allah. There were 3 brothers who were ready to go in the Masjid Al-Jamaat. And then we were thinking that because 3 brothers are ready, we presented it, and still there was, lot of questions about it, but Alhamdulillah, initially it got approved. And Alhamdulillah, when this Jamaat went, we stayed 2 days in Sharia, but also Mufti Sahib also gave us the, Rangi talk, and it was piloted within Chicago. 10 days, first 10 days of the Jamaat was piloted within Chicago, whether we can restrict the gathering to 10 ladies, and whether we can, still keep it with all the different, health regulations and all that stuff. Alhamdulillah, it went through. And every day we were thinking whether we can go, whether we cannot go, whether we can go, whether we cannot go. Alhamdulillah, but after 10 days, it came in the heart of Amir Sahib also that, and the Shura brothers, whoever were here, they said that yes, the Jamaat should go. And Alhamdulillah, we then left from here. And then Alhamdulillah, by the barakat of working over here 10 days, we got another couple to join us. So 4 couples, Alhamdulillah, and we traveled in our own cars. Alhamdulillah, before our Jamaats, the Jamaats who used to go in the path of Allah, like Nazir Bhai Jamaat and all that, we got to know from them that they used to travel in Masjid Jamaats in their own cars. So Alhamdulillah, now if we traveled in our own cars, we could have maintained the social distancing and all those different things. So Alhamdulillah, we presented it this way and it got accepted. So We all traveled in our own cars, and the first place which we went was Minnesota. And by the father of Allah, as soon as our Jamaat reached, you know, they were in two minds whether to send out Jamaats or not. And when our Jamaat reached the Mashwara over there, they said that, you know, your Jamaat has reached, it means that Jamaats are doing well in the path of Allah. We are ready to send one Jamaat for 40 days in the path of Allah. And your Jamaat should give the Ramadi talk for it. So Alhamdulillah, the Jamaat going there became a source that, you know, everybody got motivated, mashallah. They were also in two minds whether to send or not send. But the Jamaat sent out in the path of Allah, Alhamdulillah. And the people used to keep asking, really, you're going out in the path of Allah? I said, Allah has accepted us, you know. We cannot say that we actually came out by our own, but it is Allah subhanahu wa ta'ala who has made those conditions that we could actually come out in this path. Then Alhamdulillah, we spent 10, 15 days over there, 6 days in Omaha, and everywhere they were asking, and they were really surprised. And believe me, brother, you know, the Mazkurat work, it needs a lot of boost, you know, especially in this pandemic. You know, when Mazkurat were going in the Jamaat, the Mazkurat used to get a lot of effect, and they used to say that, okay, we need to go and visit the Jamaat. You know, so they used to request for slots. By the time our Jamaat came there, and we used to say that only 10 people are allowed in the gathering. And we used to do RSVP, you know, that only these people can come, whoever we invite. We cannot use social media. You know, this was specifically told us, you cannot use social media, you know, because you have to restrict the numbers, only to 10. So specifically, you know, which is the actual way of doing the effort, you know, going and personally visiting people and inviting them, inviting their families. Alhamdulillah, we did that. And we saw the barakah of that also. So the men folk were also involved, the ladies folk were also involved. And then men folk, they came up with the right tartib that the men folk should actually keep the kids when the taaleem is going on, so that the ladies, they are, you know, they are free to attend the taaleem and to get the barakah and the reward, and whatever they have to take from the taaleem, they should get it. Alhamdulillah, we saw all those things happen in this Khuruj. And Alhamdulillah, when we went there, many of the brothers, they made intention that they will also spend time in Mazkurat. And as per the tartib, that every 3 years they need to spend, you know, 40 days in Mazkurat. So brothers, Alhamdulillah, this is a request for everybody here also, that please, you know, make tartib for your Mazkurat. Because mashallah, we will fly high, everything will be going on. But if we don't take the Mazkurat along with us in the world, then it will be very difficult for the world to go on in generations. Alhamdulillah, we should spend 4 months every year. And you know, the taqaza from now, the tartib is that every 3 years we have to spend 40 days. At least 40 days in Mazkurat. This is the tartib. But the taqaza is that there are so many demands for Mazkurat Jamaat. But even I said, okay, my time is over in Mazkurat now, my time is due after 3 years. So one of the brothers, mashallah, who came here, Azhar, he was saying, brother, 3 years is tartib. But the taqaza is that if there is a demand next year, you should go in next year also, 40 days in Mazkurat. So that is why you should come out to 4 months tartib. You should come out to 4 months every year, so that you can fulfill the taqazas of everything. There are student taqazas, there are Mazkurat taqazas, there's your local Jamaat taqaza. All these taqazas are there, brother. So it's my humble request to everybody, inshallah. I hope this was a motivation for everybody.
Jazakallah. You heard the Karguzari, very limited, you know, Jamaat had, even because the time is essence of this hour, they were right. And just I would like to say a few words about this Mazkurat Jamaat. It reminded me, in the peak of the pandemic, this Jamaat, Mazkurat Jamaat, went in the path of Allah. That was the challenge time, and Mazkurat took this challenge. So we should feel ourselves guilty that when Mazkurat is doing the work, and how come we are stayed behind? And this remind me 9/11, where the Jamaat was about to send, we decided to send the Jamaat to England, Mazkurat Jamaat. And they, when 9/11 happened, the Mazkurat Jamaat was, they were furious, they cancelled. I overheard, then I went about 12 o'clock in the night, Rafi House, Dr. Rafi is sitting here, where I gave him a lot of wajar, so he was in the Jamaat too. So the Mazkurat there, we did the Muzakar, I did the Muzakar at 2 o'clock in the morning. So then encouraged the brothers to go. So this Jamaat in that, you know, furious time, the Mazkurat Jamaat went to England. Hafiz Prabhupada Sahib, may Allah enlighten his grave. All the time, many times he told me, Arre bhai, tumhari Jamaat toh kamal karti. Arre bhai, tumhari Jamaat, maine kya? Bole, 9/11 mein he came. 9/11 mein tumhari Jamaat aayi. When they went on England, on the airport, Dr. Rafi asked him, everybody say welcome, welcome, go, go, without any, asking any question, and Masturat going out. So my dear friend, with the help of Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَا مُسْبَنُ سُبْحَنَ اللَّهِ إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيَسْبِتْ أَقْدَامَكُمْ. When you help the deen of Allah, then Allah will help you. The ulama say that help of the deen is that to work on the khalq of Allah, bring to them, to the introduce the khaliq of Allah subhanahu wa ta'ala. Work on the khaliq and bring them to the, work on the makhluk and bring it to khaliq. So this is the help of the deen. Inshallah, I conclude this. I humbly request, this is an honor for us. The Mufti Sahib is around us. May Allah give him long life and we will get the benefit out of him. He will talk in Urdu and the translation will be done in the back. So those who do not understand Urdu, go back and then somebody will translate you. Umar bhai and Abdul Ghani, go back. You translate them. So everybody understand Urdu?
Sayyidipo,
go back. Anybody who do not understand Urdu, go back, inshallah, translation will be done. Umar Khurish, inshallah, brothers, put down your mask and be careful about Anis bhai mask aaya apka. Isaf bhai mask aaya apka. Everybody should follow the rule and they should put down the mask.
मौजूदा हालात में आप हजरत वक्त लगाकर आए, इस पर जितनी भी खुशी का इजहार किया जाए उतना अच्छा है और जितनी भी खुशी का इजहार किया जाए वो कम है। علامت ہے, چونکہ دین کے کام کی اگر توفیق ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے تو یہ اللہ کا کرم ہے. دوسرا آدمی چاہے ہمارا کارنامہ بولے, لیکن ہمیں کسی اپنے کام پہ کارنامہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. کتنا بھی کام کرے آدمی, کتنا بھی مجاہدہ کرے, کتنے بھی قربانی دے, حضور کی امتی تو نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی ہے امتی تو کوئی نہیں دے سکتا. حضور کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ تو جو ہے نا, آپ تو اس طرح فرق ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور پورا مجاہدوں میں بھرا ہوا ایک دم قربانیوں کے ساتھ, مجاہدوں کے ساتھ, جس طرح کی اس روحانیت کے ساتھ, جس قوت کے ساتھ وقت آپ کا گزرا, جو کام آپ سے اللہ پاک لینا چاہ لیے, تو اس کے بعد فرمایا کہ حمد اللہ کی بیان کرو, آپ استغفار کرو. حمد اللہ کی تعریف اللہ پاک ہوتے ہیں, تسبیح بھی اللہ کی اور تحمید بھی اللہ کی, فسبح بحمد ربک. تسبیح پاکی بیان کرنا, تحمید لائق تعریف قرار دینا, کوئی اچھا کام ہو تو اس پر تعریف ہے وہ اللہ کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ استغفار فرمائیں. سبق ہے اس میں, اس میں بتایا جاتا ہے. بگاڑ دینا نہیں ہے, اگر ہم بگاڑیں گے لوگوں کے سامنے سنانا شروع کر دیں ہم ایسا کر کے آئے ہم ایسا کر کے, سب پورا چلا جائے گا. فائدہ کیا ہے, اتنا مجاہدہ بھی کیا, اتنا رسک بھی اٹھائے, اتنا اندیشوں کو بھی پالا, اس کے بعد ثواب پورا پانی میں. صرف اللہ کے فضل پر نظر ہونا ہے, اور یہ سیکھنے کے لیے جاتے بھی ہیں کہ کہنے والی ذات اللہ کی, کہنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو یہ جس نے کیا وہ کس نے کیا. جماعت میں نکلے 40-40 دن لگا کے آئے, مستورات بھی لگا کے آئے, بغیر مستورات کی بھی لگانے کا موقع ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ایک کارنامہ ہے, بس اللہ نے ہمیں قبول فرما لیا, اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, اللہ کی قبولیت تھی, یہ خوشی کی بات ہے نا. خوشی ضرور ہونا چاہیے, ایک کام پر خوشی ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے نیک کام کی توفیق پر خوشی, وجود میں نہیں آتا, ریا کاری میں نہیں آتا, اور برے کام کے سرزد ہو جانے پر صدمہ. انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تیری برائی تجھے صدمہ پہنچائے تو یہ ایمان کی علامت. تو دونوں میں بہت فرق کرنا ہوتا ہے, باریک فرق ہوتا ہے, کیونکہ نیکی کی توفیق ہونا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ایمان ہوتا ہے. تو پھر نیکیوں میں مہانیکی, ام البر, سید البر, نیکیوں میں سردار, سیدہ اعمال اہل البر, نیک لوگوں کے اعمال کے جو سردار ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت, آپ فرمائیں کہ یہ ایک وقت امت پر آئے گا کہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر تو ساری بھیس خراب ہو جائے گی, ساری دنیا میں فساد آ جائے گا, ساری چیزیں بکھر جائیں گی, تو امت کے پاس اتنی بھی عقل نہیں رہے گی. صحابہ کرام کو جب یہ بات کہی جاتی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ امت اتنی بے عقل ہو جائے گی, اتنی بے فہم ہو جائے گی, اتنی قرآن حدیث کے علوم سے دور ہو جائے گی. تو اس پر انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیف تترکو, ہمت جو ہے نا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وهما سیدا اعمال اہل البر, जबकि ये दोनों अहले बैत नेक लोगों के कामों के सरदार हैं, फिर कैसे छोड़ देंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये मत बोलो कि ये नेक लोगों के कामों के सरदार काम है, ये मत बोलो, ये नहीं फरमाया उन्होंने। आपने उनकी इस बात को साबित रखा, गलत बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवारा नहीं करते, नबी गवारा नहीं कर सकते, ये नबी की फितरत होती है, वो पैदा इस पर होते हैं, क्योंकि फरीज है, नबूवत के खिलाफ होता है गलत बात पर खामोश रहना, ठीक है, नहीं रह सकते। आप किसी बात पर खामोश हो तो खामोश होना हदीस है, आपने सुना ही होगा, बोलना भी हदीस, करना भी हदीस, खामोश रहना भी हदीस, किसी बात पर या किसी काम पर। आपके सामने किसी ने कोई बात कही, आपके सामने किसी ने कोई अमल किया और आपने उस पर सबूत फरमाया, वो भी हदीस होती है, उसको तकरीरुन नबी कहते हैं, कौलुन नबी व फ़िअलुन नबी व तकरीरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में होती है। तो सहाबी ने कहा कि ये सैयदा हमारी वाली भी रहे, इस पर कैसे खामोश हो जाए, उम्मत छोड़ देगी। तो सैयदा हमारे अहले बैत की तौफीक होना मेरे दोस्तों, आप ऐसे अंदाज़ा फरमाइए कि कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी हुई हमारे साथ, हालांकि हम इस काबिल भी नहीं थे, देखा है हमारे गुनाह, हमारी गफलत, हमारी सुस्ती, हमारे ईमान की कमजोरी, फिर भी तौफीक होगी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सवाब की बात है। हम जितना आप पर फख्र करें कम है, हम जितना जो है ना आपको क्रेडिट दें वो कम है, लेकिन जिसको जो जाकर आया उसके लिए नहीं, उसके लिए तो डरने की चीज है, क्योंकि जिस शदीद हालात में आदमी काम करता है ना उसके असरात वैसे ही होते हैं। अब ये साबित करेगा इस बात को कि आपने शदीद हालात में काम करने पर कितना असर अपने अंदर लिया। मैंने तबलीग के बुजुर्गों से सुना है कि हर पिछले अमल की कबूलियत का मदार अगले अमल की तौफीक पर है, ये मतलब पहचान अलामत उसकी, पिछला चिल्ला कब होगा, इसकी अलामत क्या है, अगला चिल्ला कब होगा, पिछले 40 दिन कबूल हुए इसकी अलामत क्या है कि अगले 2 महीने कब होंगे, अगला 4 महीने कब होगा। अगर अगले 4 महीने लग रहे जल्दी लग जाते बहुत कबूल होने की अलामत, लगे मगर बहुत लंबे टाइम के बाद लगे तो कबूल हुआ था लेकिन बस वैसे ही कबूल आता बाजार को, और अगर जाके आने के बाद में भूल ही गए कि मैं तो वक्त लगा चुका हूं, मैं तो जाके आ चुका हूं, इसका मतलब ये कि वो पहले भी नहीं गया था, बगैर वजू की नमाज पढ़ रहा था। नमाज अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो नमाज के अक्षर तो पूरे होंगे, वजू अगर नहीं रहेगा, लेकिन उस पढ़ने का एतबार है कुछ, एतबार नहीं है, मियाद तो नहीं है, ये अलामत है, मियाद में अलामत में फर्क होता है। तो इस शदीद हालत में जाना और दीन ईमान सीखना, ईमान की बातों का मुजाकरा करना, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली के ही करने का जिक्र बार बार करना, जबकि पूरी दुनिया जो है वो फेल को, बीमारी को, हादिसे को, आरिजे को अल्लाह के गैर की तरह मंसूब कर रही, सारी दुनिया में बातें शिर्क से मिलती हुई हो रही है ज्यादा, एहतियात वाली जुबान बोल रहा हूँ मैं, शिर्क से मिलती हुई, शिर्क नहीं होता पूरा लेकिन शिर्क से मिलता हुआ है। अगर ये बोलेंगे कि ये बीमारी एक को तो लगी थी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उसके बाद अल्लाह का हुक्म बाकी नहीं रहा, वो तो खुद ही लगती रही, ये तो शिर्की है ना, ये तो बेईमानी है खालिस, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ला अदवा वला तियरा वला हम्मत वला सफर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतअद्दी होना बीमारी का कोई चीज नहीं है, बदशुकुरी लेना इसकी कोई हैसियत नहीं है, उल्लू का पुकारना ये नबूवत की अलामत है, मशहूर था मक्के वालों, इसकी कोई हैसियत नहीं है, सफर का महीना मनहूस है, बीमारियां मुसीबतें नाजिल होती हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये हदीस शरीफ है, ला अदवा वला तियरा वला हम्मत वला सफर। तो अगर किसी ऐसे वायरस को, किसी ऐसी बीमारी को आम लोगों की तरफ ऐसे मंसूब किया जाए कि अल्लाह ही बीच में न रहे तो वो तो इस्लाम के खिलाफ बात है, मगर एक बात समझने की है, इस्लाम ने गैर इस्लाम ने वायरस के फैलने के बारे में है क्या तालीम, फर्क क्या है, गैर मुस्लिम तो हुक्म आम लगा देगा इसलिए ईमान के बगैर वाला, ईमान वाला इस चीज को कैसे समझेगा, कैसे लेगा इस बात को कि ईमान भी बाकी रहे और जो सूरत हार है वो थोड़ी किसी धंधे में समझ में भी आ जाए, माकूल भी हो जाए। यही बात आप चलाने गए थे, यही बात आप बोल के आए, तो आपसे आप, मेरे से ज्यादा आप समझे हुए होंगे इस बात को, आपको समझाना चाहिए कि आपने क्या समझाया वहां इस बात को, इसमें ईमान क्या समझाया। इसमें भी ईमान होता है, और इसमें तो ऐसे मौके पर तो इसी का ईमान ज्यादा बोलना होता है। इसमें जो ईमान है वो ये है कि जैसे पहले आदमी को बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगी, दूसरे को भी अल्लाह के ही हुक्म से लगती है, पहले को लगने की वजह से नहीं लगती, तीसरे को भी अल्लाह के हुक्म से ही लगती है, हुक्म जदीद है। अगर ये कहें कि अल्लाह तो एक को बीमार करना चाह रहा था, मगर वो ऐसी मोटी ताजी निकली बीमारी कि अल्लाह के चाहे बगैर सबको फैल गई, इससे ज्यादा बेईमानी की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह किसी को खाना खिलाना चाह रहा था, वो दिया एक को और सब सबने उसको ले लिया। अल्लाह एक को बीमार करना चाह रहा था, सबको अल्लाह एक को गुमराह करना चाह रहा था, वो शैतान ने सबको गुमराह कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए मैं यू बोले लेता हूं फला हा के रहा, जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं देता, इन्हें शैतान करता है गुमराह। फेल की फेल जो है ना अल्लाह के अलावा में नहीं होता, याद रखो ये अकीदा है। फिर मैंने काम काम अल्लाह के अलावा में नहीं होता, मासिव अल्लाह में काम नहीं है। मासिव अल्लाह काम को कबूल करता है, उसको कसब कहते हैं, लहा मा कसबत वालिया मा कसबत। बंदा जो है ना वो साइकिल के पहिए को आप फिराएंगे तो साइकिल का पहिया खुद नहीं फिर सकता, मगर कोई फिराए तो फिरता है। आई बात, गाड़ी का पहिया खुद से नहीं फिरता लेकिन कोई फिराएंगे तो फिरेगा। तो फिरना जो है, फिराने पर फिरना, इसको कसब कहते हैं। इसको इसी वजह से वल्लाहु खलकतुकुम वमा तअमलून, हर फेल के खालिक अल्लाह ही है। जैसे हमारे खालिक अल्लाह है, हालात के खालिक अल्लाह है, काम के खालिक भी अल्लाह है, हमारे हत्ता के हमारे हमारे हमसे जितने फेल साबित होते हैं सबके भी खालिक अल्लाह ही होते हैं। बोल रहा है एक आदमी तो अल्लाह ताला बोलना पैदा करके देते हैं, तो किसी के मुंह से निकलता हुआ नजर आता है, और इतना करीब है ये मामला, अभी अभी बोल रहा है बंदा, अभी पैदा करके दे रहे हैं। एक आदमी सुनता है तो अल्लाह ताला सुनना पैदा करके देते हैं, तो बंदा सुनता रहता है, और इतना नजदीक है वो मामला कि उन्होंने पैदा करके देते हैं ये कबूल कर लेता उसको। वो सुनाते हैं हम सुन लेते हैं, वो कहलवाते हैं हम कहते हैं, वो दिखवाते हैं हम देखते हैं। देखना पैदा करते हैं वो देखना पैदा करके बंदे को देते हैं, मखलूक को देते हैं, तब मखलूक देख सकती है। ये मतलब नहीं कि स्टोरेज के अंदर डाल दिया था देखना, स्टोरेज में नहीं डालते सर, सर किसी का मुंह फाड़ के देखो, सर फोड़ के देखो उसमें से कोई बैटरी वैटरी निकलती क्या, कुछ भी नहीं करती। किसी का कान फोड़ के देखो उसमें से क्या निकले, किसी की जुबान काट के देखो उसमें से क्या निकले। फेल हमारे पास नहीं होता, फाइल अल्लाह पाक है। तबलीग की बात ही शुरू होती है ला फाइला इल्लल्लाह, करने वाली जात अल्लाह की है। फरमाया यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि इस उम्मत में शिर्के जाती और शिर्के सिफाती नहीं है, शिर्के अफाली है। इस वजह से तौहीद अफाली से बात शुरू की गई। तबलीग की जो शुरुआत हुई, तबलीग के काम की जो मेहनत हुई, मेहनत ईमान बनाने की जो मेहनत शुरू हुई है वो तौहीद अफाली से शुरू हुई। फेल करने वाली जात अल्लाह के, नफा अल्लाह के हाथ में, नुकसान अल्लाह के हाथ में, तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में, बीमारी अल्लाह के हाथ में, फख्र अल्लाह के हाथ में, दीना अल्लाह के हाथ में, ये जो यहाँ से दावत वालों की बात शुरू होती है, दावत के मज़मून चलता है, उसको तौहीद अफाली कहते हैं। क्योंकि फेल उनका है, फेल उनकी तरफ से होता है। तो इसी तरीके पर ये बीमारी में भी ऐसे ही मसला है। बीमारी में ईमान क्या है, वायरस में ईमान क्या है, वायरस में ईमान ये होता है कि बीमारी खुद से नहीं फैलती, अल्लाह के हुक्म से फैलती है। और ऐसा भी नहीं होता कि एक को तो हुक्म अल्लाह का अब शुरू में हुआ और दूसरे को उसके जिम्मे में होता है, वैसा भी नहीं होता। हुक्म जदीद है, वो नया हुक्म होता है, हुक्म मुस्तकिल है, वो हुक्म मुस्तकिल से दूसरा बीमार होता है, हुक्म मुस्तकिल से तीसरा बीमार होता है, हुक्म मुस्तकिल से तो लगता कैसा है, वो लगता नहीं है, एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फिजा है सबको एक चीज देने की, जैसे जैसे सबको सांस देते हैं, सबको रोटी देते हैं, सबको पानी देते हैं, सबको जिंदगी देते हैं, सबको वजूद देते हैं ना, तय कर लिया कि इतने लोगों को बीमारी भी एक साथ दे दूंगा तो दे, हुक्म जदीद होता है वो, लेकिन डिसाइडेड पहले से होता है कि कितना को देना है। वायरस से खुद से नहीं फैलता, और यही मजबूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस वक्त में समझाया जब जब आपने देखा कि ऊंटों को खारिश हो गई, बहुत से ऊंटों को खारिश हो गई, आपने पूछा सहाबा से कि वो क्या हुआ इन ऊंटों को, तो सहाबा ने कहा कि एक ऊंट को खारिश हो गई थी, वो उसको ऊंटों के साथ मिला के खड़ा कर दिया, उसकी लाइन में खड़ा कर दिया, तो वो एक से सबको लग गई। ये कानूनी कांसेप्ट है ना, आम कांसेप्ट पहले भी था अभी भी होता है, वो उसके सबको लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया कि पहले को किससे लगी, मैंने जरा बोला पहले ऊंट को जो खारिश हुई वो किससे हुई, किस ऊंट से हुई, ये आपने पूछा, यानी कि उसको तो किसी ऊंट से नहीं हुई, फिर यानी कि अल्लाह के हुक्म से हुई, तो दूसरे को इससे क्यों होगी, दूसरे को भी अल्लाह के हुक्म से होगी, तीसरे को भी अल्लाह के हुक्म से होगी, चौथे को भी अल्लाह के हुक्म से होगी। तो हमारे पास ये है कि एहतियात अलग चीज होती है, कोई हुक्म चल पता नहीं ना हमको कि अल्लाह तआला ने जो है ना इसको किसको किसको कैसे कैसे लगाना है तय फरमाया हुआ है, लिहाजा हुक्म एहतियात का आएगा, डिस्टेंस का आएगा तो डिस्टेंस से बैठेंगे, मुंह पे कपड़ा लगाने का आएगा तो मुंह पे कपड़ा भी लगाएंगे, लेकिन हमारी नजर में गैर मुस्लिम की नजर में, हमारी सोच में गैर मुस्लिम की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा, हमारे पास अल्लाह तआला के मंशे के बगैर कुछ नहीं। और यही चीज आदमी सीखना भी चाहता है, यही बात चलाना भी चाहता है, और इस बात पर जितना दिमाग आदमी का बन जाएगा ना उतना ज्यादा डरलेस हो जाएगा बंदा, उतना ज्यादा अंदेशा लेस हो जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस लेस हो जाएगा, उतना ज्यादा टेंशन लेस हो जाएगा। ये जितना टेंशन इस वक्त है ना दुनिया में और जितना स्ट्रेस है इस वक्त हमारे इस मुल्क में खुशूस से हमारे हालात में बहुत ज्यादा है, उसके असर वजह क्या है, उसकी असर वजह ईमान की कमी है, ईमान की कमजोरी है, उसकी असल वजह अल्लाह की जात पर से नजर का हट जाना है, अल्लाह पर भरोसे का नहीं होने का है। क्योंकि जब बंदे की नजर अल्लाह पर हो और अल्लाह पे भरोसा हो और लड़ाई करने वाले पर के जम जाए तो क्या स्ट्रेस, क्या टेंशन। इसीलिए नेक आदमी की जिंदगी बहुत खुशी वाली होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो खुशी अल्लाह वालों को हासिल होती है उनके दिलों में पाई जाती है राहत और खुशी, अगर बादशाह इसको तलवार के जरिए से ले सकते हैं तो जरूर हमसे लड़ाई करके हमसे ले लेते, ये बादशाहों के पास में भी नहीं है क्योंकि उनके पास मारिफत नहीं है, उनकी नजर अल्लाह पे है नहीं, तो उनको जो खुशी होती है चाहे नौकरी हो या ना हो, चाहे पैसे हो या ना हो, जैसे खाना पीना हो या ना हो, चाहे मकान हो या ना हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो या ना हो, फिर भी वो खुश रहते हैं। एक नजर होती है, अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, फिर सब पूरी इंसानियत को बताया, अल्लाह ने फरमाया कि तुम किसी हालत में नहीं होते, मा तकूनु फी शानी, नहीं होते तुम किसी हालत में, वमा तत्लु मिनहु मिन कुरान, और ना तुम कुरान पाक की तिलावत करते हो, वला तअमलून मिन अमलिन, और ना कोई अमल करते, कोई अमल तुम नहीं करते, कोई कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, किसी हालत में तुम नहीं होते, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, मगर हम वहां मौजूद होते हैं, मगर हम हाजिर होते हैं, इस तुफीदु नफी, जब तुम उसमें मशगूल होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते और आपके दावत का आम तरीका जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत था, आप तिलावत के जरिए से दावत दिया करते थे, आप दावत में तिलावत ही किया करते, पढ़ा करते थे, सब आते हो डायरेक्ट अल्लाह ताला की बात सुनते थे समझते थे, जब आप देते तो लोग जो है ना नहीं सुनना चाहते, शोर करते, हंगामा करते, आपको तकलीफ पहुंचाते, आपको डिस्टर्ब करते, और आपके पास से लोगों को खींच के ले जाते हैं दूसरी तरफ, कुछ लोगों को उन्होंने खरीदा हुआ था, वो जो है ना जिन्नात के किस्से, परियों के किस्से, इधर उधर की दास्तानें जो होती है ना, वो इस किताबों को लाते थे, कहेंगे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है ना आपको बताते हैं, सुना सुनाते हैं, इधर आओ। तो एक पूरा काम होता रहता था जब आप दावत का काम करवाते रहते थे, तो उसमें आपको बड़ी तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला ने उस मजमून को बयान फरमाया कि जब आप पढ़ते हैं ना कुरान पर, हम हैं, अब आपको कोई कोई जो है ना आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको हटाना चाह रहा है, कोई आपके पास लोगों को लेके जा रहा है, कोई शोर कर रहा है, और कोई काम नहीं करते जब भी, और किसी हालत में नहीं होते, खुशी का हाल, गम का हाल, बीमारी का हाल, तंदुरुस्ती का हाल, पैसों का हाल, फकर का हाल, गिना का हाल, दुश्मनों का हाल, दोस्तों का हाल, इज्जत का हाल, बेइज्जती का हाल, इसे हमारा कौन फिश है, हमारा तलुमिन हुमिन पुराने वला तअमलुन मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहुदा, मगर हम वहां होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला होते हैं का एक ऐसा यकीन सहाबा को दिया गया, वही के जरिए से इंसानों को बताया गया कि जब अल्लाह वालों को हजरत सहाबा को अल्लाह वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको मिली बिलवास्ता मिली या बिना वास्ता मिली, साहबा को बिना वास्ता मिली, उसके बाद वालों को सबको बिल वास्ता मिली, उसकी एक खसूसियत होती थी, उसकी खसूसियत होती थी कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने होने की वजह से अल्लाह देख रहे हैं, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो उनकी नीयत खालिस हो जाती थी, मासूमल्ला नहीं रहता। और फिर यह कि बड़ी से बड़ी कुर्बानियां आसान हो जाती थी, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह पाक मेरे सामने, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। आप तो हमारी आंखों के सामने, आप तो हमारे आप तसल्ली रखिए, आप मेरी आंखों में ही, इतना बोलने के बाद बाकी क्या, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम बेफिक्र हो गई बात। तो बड़ी से बड़ी कुर्बानियां जो हजरत साहबा दे डालते थे, और अल्लाह ने दी, उलमा ने दी, बुजुर्गों ने दी, दावत के सरपरस्तों ने दी, और भी दावत के सरपरस्त को दे रहे हैं, दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दे रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में जो लोग लगे हुए हैं काम में, दुश्मन के मुकाबले में बरसरे पैकार है, वो है, कैसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती है, क्यों ये सब आसान हो जाता है। बड़ी से बड़ी तकलीफ झेलना आसान होता है, बड़े से बड़ा रिस्क उठाना आसान हो जाता है। यह रिस्क जो है ना मोहब्बत की अलामत है। आप लोग जो अल्लाह के रास्ते में जाके आए, अल्लाह के साथ मोहब्बत होने की अलामत है, दीन से मोहब्बत होने की अलामत है, दीन के लिए रिस्क उठा लेने का जज्बा, ये बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकता, ये मोहब्बत ही में होता है। और दीन के लिए आने वाली तकलीफ को महसूस नहीं करना, तकलीफ में भी खुश हो जाना, तकलीफ में भी ये खुशी होती है। किताबों में लिखा है कि जैसे जब किसी को किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो और वो उसको जोर से दबोच दे, महबूब जो है ना आशिक को अपने जोर से दबा दे, और उसके बाद बोले कि अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं दूसरे को दबा लेती, आप क्या बोलेंगे, राजी नहीं होंगे आप, कि भाई और दिन तक दबाने दबाने पूरे पसलियां करते हैं। मोहब्बत की एक खसूसियत है तकलीफ बर्दाश्त करना, तकलीफ में खुश हो जाना। एक वाक्य लिखा है किताबों में कि एक आदमी को एक से मोहब्बत हो गई थी, अब वो लोग जो है ना उसके मुखालिफ हो गए, उसको मारना शुरू किया, मारते रहे, कोई मार, कोई चप्पल मार रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसने वो एक नहीं धोने, वो कुछ बोली नहीं रहा, टस्से मस नहीं मारा, लेकिन अचानक जो है किसी के मारने पर उसकी जुबान से निकल गया आह, बड़ी जोर से लगी, लोगों ने उतनी देर से मार खा रहा है, अब तुझे कुछ तूने कुछ कहा ही नहीं, अब ये इसने थोड़ा सा मार दिया तो तू कह रहा है इतनी जोर से लग गई। तो कहने लगे वो जो जब से वो लोग मार रहे थे ना, तो जिसकी वजह से मार रहे थे वो खड़ी हुई थी सामने, तो उसके दीदार में उसके देखने की वजह से मैं मस्त था, उसकी वजह से मार रहे हैं, जिसके लिए जो मुझे देख रहा है उसके लिए मार रहे हैं, जिससे मुझे मोहब्बत है उसके लिए मार रहे हैं, और जिससे मुझे मोहब्बत है वो मेरे इस मंजर को देख रहा है, मुझे उसमें मजा आ रहा था, और अभी गई है बोले बस उसके जाते ही मार लग रहा है, मैं खुश हो रहा है। ये बातिल मोहब्बत की असरात है, मखलूक से मखलूक को जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके ही असरात है, जब खालिक से मोहब्बत हो जाती होगी मेरे दोस्तों, खालिक के साथ ताल्लुक बन जाता है, और वो यूं कहे कि इस तुम हमारी आंखों के सामने हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर क्या, सफर भी आसान, खुरूज भी आसान, पैसे लगाना भी आसान, वक्त लगाना भी आसान, तकलीफ बर्दाश्त करना भी आसान, बुखार सहना भी आसान, जख्म सहना भी आसान, खून बहना भी आसान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जख्मी हो गई, इन्हीं इल्ला इस्लाम दमी भी, अरे ये उंगली का खून है इससे क्या है, वफी सबीलिल्लाह ईमान अभी भी, ये तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में लगा है, ये तो मतलूब है, ये तो होना चाहिए, अरे कुछ तो निशानी हो वहां जाने के वास्ते, मोहब्बत की कुछ निशानी चाहिए होती है, यादगार चाहिए, तो इस मोहब्बत की यादगार तो होनी चाहिए था कि हुज़ूर ने फरमाया। साहबे किराम को जब अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाता था तो क्या फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। वो क्या कामयाबी थी, बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, दुनिया से महरूम हो रहे हैं, जायदाद से महरूम हो रहे हैं, अब इनके पास मकान नहीं रहेगा, अब इनके पास जमीन नहीं रहेगी, अब इनके पास दुकान नहीं रहेगी, अब इनके पास पैसे, वो दुनिया के रंगों को से यहाँ से भेज दिए गए, तो वो क्या कामयाबी थी इनकी, फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। कितने सहाबा की जुबानों से ये जुमला निकलता था, फुस्त व रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गए, क्योंकि वो जिसके लिए जान थी उनको पता चल रहा होता था कि जान तो उसके लिए जानी थी, चली गई, रिस्क से निकल गया, मैं जाएगी नहीं जाएगी उनके नाम पे जान एक रिस्क था, ये जान उनके लिए कुर्बान होगी नहीं होगी और उनके रास्ते में कबूल होगी नहीं होगी एक रिस्क था, लेकिन जब ये रिस्क खत्म हो गया तो पता चला कि मैं कामयाब हो गया, ये जुमला था वो फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, तो क्या रिस्क खत्म हो गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत सहाबा के बारे में कि बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो यूं कहते हैं कि वक्त आने पर हम अल्लाह ताला को अपना ताल्लुक दिखाएंगे, अल्लाह ताला के पास आने पर अल्लाह हम अपना ताल्लुक दिखाएंगे, हम कितना उनको चाहते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं वो दिखा देंगे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि फमिनहुम मन कदा नहबहु, बाज हुआ है जिन्होंने अपनी इस तमन्ना को करके दिखा दिया, अल्लाह फरमा रहा उनके बारे में, फमिनहुम मन कदा नहबहु, बाज हुआ है जिन्होंने अपनी तमन्ना और आरजू दिखा दी, 80-80 90-90 जख्म सामने के हिस्से पे लेके मरे क्योंकि उनको करना था कुछ, कल कयामत में पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, और जिसके लिए किया वो भी बता देगा कुछ कैसे उसने उनको देखा, सामने आ जाएगी चीज, उन्होंने अपना पूरा कर दिया। और अल्लाह फरमा रहे हैं मैं साहबा के दिलों का खुलूस ऐसा था कि अल्लाह पाक पहले से शहादत दे रहे, और बाद वो हैं जो इंतजार में हैं, वक्त आएगा तो वो भी करेंगे, वमा बदलू तब्दीला, और किसी किस्म की तब्दीली उनमें नहीं आई। अल्लाह ताला ने साहबे किराम की तारीफ में फरमाया वमा बदलू तब्दीला, इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के लिए तो करना सीखना है, कुर्बानी देना सीखना है, वो करने वाले साथ वही है, ईमान ही तो असर बनाने का है, उनसे ताल्लुक ही तो असर बनाने का है, उनके हाजिर होने का, उनकी निस्बत एहसान का कि मशक्कत तो असर करने की है, ताकि हमारा हर अमल और हमारा हर एक्शन अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में, अल्लाह तआला की ध्यान के इस्तेदार के साथ, उनके ध्यान के साथ हो रहा हो, क्योंकि वो तो देख ही रहे, हम चाहे इसका ध्यान बांधे ना बांधे, वो तो एक हकीकत है, तो कौन सा बंदा अल्लाह से गायब हो सकता है, कौन अल्लाह से दूर हो सकता है। इसलिए कुर्बानी देना है, वक्त लगाना है, पैसों का खर्च करना है, हालात में डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत कमजोर हो जाए इस्तेफार करना है, हालात साथ नहीं देते मशवरा नहीं हो रहा, सेहत के एतबार से दूसरी चीजों के एतबार से मशवरे के ताबे हो। लेकिन अगर हिम्मत किसी की हो रही है और मशवरा भी ऐसा कोई उसके सामने नहीं आ रहा उसके हालात के एतबार से, उसको अल्लाह के जाते आने पर भरोसा करना चाहिए। वो मैं तवक्कल अला अल्लाह व हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी होता है। इसको कहते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह पे भरोसा करने का मतलब होता है अल्लाह से नेक गुमान करना। अल्लाह से नेक गुमान करने का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ में इस जहन को बनाना कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा करेंगे, अल्लाह मेरे साथ ऐसा करेंगे, इसका एतमाद बनाना, इसको नेक गुमान कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं वैसे उसके साथ मामला कर देता हूँ, मुझे कुछ उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें। अरे ये ऐसा गुमान कर रहा है इसके वास्ते इतने जतन करने पड़ेंगे, उनके लिए कोई जतन नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ गुमान किया कि वो मुझे बचाएगा, और बगैर इब्राहिम के बचाएगा, बगैर फरिश्तों के बचाएगा, और बचाना है तो बचाएगा, नहीं बचाना है जलाना है तो जलाएगा, बचाना है तो भी मैं तैयार हूँ, और अगर वो जलाना चाह रहा है तो मुझे जलना ही पसंद है, अगर वो जला देना चाह रहा है तो मुझे बचना पसंद नहीं है, मुझे भी जलना ही पसंद है। ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सोचने का अंदाज। जिब्राइल सलाम भी आ गए, उठा के लेके चले आपके लिए, अम्मा भी कफन, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अल्लाह ताला के साथ ही अपना मामला बांध दिया। अल्लाह ने फरमाया ये तो खलील है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, फरिश्तों को दिखा दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से पहले ही कहा था कि इसकी जो अंदर है ना वो ऐसी चीज है, देखो आप देखना चाहे तो देख जाए। अल्लाह ने फरमाया आप बुनी पर कहो सलाम अल्लाह इब्राहिम, आप ठंडी हो जाओ, सलामत वाली हो जाओ इब्राहिम। जब वो बचाने का फैसला कर लेते मेरे दोस्तों कैसे ही हालात में बचा लेंगे, और अगर किसी मसलहत से वो मुब्तला करने का फैसला कर लेंगे तो कितनी एहतियात कर लो मुब्तला हो जाओ। एहतियात करने के बावजूद जब मुब्तला नहीं हुए थे हुए, एहतियात नहीं करने के बावजूद जब नहीं बचे गए बच गए। इतने घर हैं जिनमें एक आदमी को होने के बाद दूसरे को दर्द नहीं हुआ, कहीं ऐसा हुआ कि पूरे घर को भी हुआ, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा हुआ कि एक को हुआ दूसरे को नहीं हुआ। वो तो उस पर है मामला, हुक्म जदीद है, हर एक के लिए अलग अलग हुक्म होगा। जब हर एक के लिए अलग अलग हुक्म होगा तो वो तो कभी भी हो सकता है, वो नॉर्मल हालत में भी हो सकता है, वो रेगुलर हालत में भी हो सकता है, इरेगुलर हालत में भी हो सकता है, वो इसी बीमारी की क्या बात है वो किसी और रास्ते से भी हो सकता है, वो तो किसी भी तरह का हुक्म हो जाए कभी भी हो जाए। जब मुनाफिकीन की तरफ से ये बात चली कि दुश्मन बहुत ज्यादा है, ताकतवर है, बहुत ज्यादा सामान उसके पास है, और हम जो जा रहे हैं हमारे पास सामान भी नहीं है, हम ताकतवर भी नहीं है, हमारे बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त सिचुएशन के एतबार से मुनासिब नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूछा कि अगर मैं तुमको मारना चाहूं तो तुमको यहां इसमें हराने की जरूरत है मुझे। बोले यनफअकुम अलफिरार इन फररतुम मिनल मौत या बिल क़त्ल, तुम्हारा जो है न जाना तुमको मरने से बचा देगा, या तुम समझोगे कत्ल नहीं होंगे कम से कम तो कत्ल से बचा लेगा, मैं तो कत्ल करवा दूं चाहे तो वहां पे भी घर में तुम्हारे लग गए, मौत से नहीं बच सकते। वलकुन तो फी बुरूजिन मुशय्यदा, इतने मजबूत किलों में घुस जाओ वहां पे भी भेज दूंगा। जो उनका उनका हुक्म किसी जगह का पाबंद नहीं है, किसी वक्त का पाबंद नहीं है, किसी कंडीशन का पाबंद नहीं है, खास हालात होंगे तो ही उनका हुक्म होगा, नहीं है इसका पाबंद नहीं। यही तो सीखना है मेरे दोस्तों भाई, दावत की इस मेहनत के जरिए से इस दावत कयामत के करीब में ऐसे हालात और बहुत आएंगे, ऐसे फितने और बहुत आएंगे, और इन सारे हालात और फितनों का असल मकसद होगा दीन से लोगों को हटाना, अल्लाह से नजर का हटाना। असल मकसद ये खाने पीने से बहस नहीं है दज्जाल, बल्कि वो तो ये कहेगा कि अगर तुम हट जाओ दीन से तो मैं खाना पीना और तुमको दे दूंगा, जन्नत अपनी जन्नत में पहुंचा देगा। जो लोग उसकी बात मानेंगे बारिशें बरसेंगी, जो लोग उसकी बात मानेंगे उनके जो जानवरों के दूध जो है ना वो बढ़ जाएंगे, जो लोग उनकी बात मानेंगे उनके उसके उनके गले जो है ना बेहिसाब उगेंगे। खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, आयश की कमी नहीं, मजे की कमी नहीं, इलाज मुआलजे की कमी नहीं, दवाओं की कमी नहीं है। दज्जाल को इससे बहस नहीं है, दज्जाली फितनों को इससे बहस नहीं है, क़यामत के करीब आने वाले बुरे हालात को इससे ताल्लुक नहीं है कि हमें दुनियावी एतबार से कितनी तकलीफ पहुंचेगी कितनी नहीं। सारी बहस इससे है कि किसका ईमान कितना खराब होता है। अगर ईमान खराब हो गया इंसान का, काम हो गया दज्जाल, कामयाब हो गया दज्जाल, दज्जाल कितना कामयाब हो गया। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना भी है, वैसे वैसे हालात और बिगड़ेंगे और बहुत से हालात आएंगे। और फितनों का इलाज सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत है। याद है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे इंतहाई गम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद फ़ज़ाइल अमल में, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। देखा क्या बात है, बहुत ज्यादा सदमे में क्यों बैठे हो? मैंने कहा सदमा तो है बहुत ज्यादा, लेकिन एक और फिक्र भी लग गई। मैंने कहा वो क्या? मैंने कहा वो फिक्र ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और हमने उनसे ये नहीं पूछा कि फितने में असर करना क्या है, नजात किस में है। उन्हें पूछे जब मुसीबत आ जाए नजात के ऊपर तो नजात किस में है, ये हमने तो पूछा नहीं। तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि तुम तसल्ली रखो, मैंने पूछ लिया, तुम तसल्ली रखो, मैंने पूछ लिया। फिर उसके बाद फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फितने में इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह है। इतनों का इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह में जिस ईमान की दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह में मासूमल्लाह की मासूमल्लाह से नजर हटाने की जो तबलीग है, दावत है, मासूमल्लाह की फनाई, मासूमल्लाह का कुछ नहीं कर सकना, मासूमल्लाह का मोहताज होना, मासूमल्लाह से कुछ नहीं हो सकना, ये जो यकीन बनाना होता है और सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, ये जो यकीन बनाना होता है, यही चीज आदमी का ईमान बचाएगी। और किसी से अपना ईमान बचाना मुश्किल है, नहीं बचेगा फितने के जमाने में। ईमान की मेहनत ही असल है। बहुत अजीम मेहनत है मेरे दोस्त भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेहनत बहुत ही अजीम मेहनत है। और ये मरकजी मेहनत है, बुनियादी मेहनत है, शुरुआती मेहनत है, यानी ये चीज जितनी मजबूत है आइंदा की चीज उतनी चलेगी। दिल उतना चलेगा, ईमान उतना चलेगा, ईमान उतना बचेगा, ईमान उतना फैलेगा, ईमान उतना तरक्की करेगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह है इसको पढ़ना भी है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह है इसके माना पर ध्यान भी देना है, इसका यकीन अपने अंदर बनाना है, और इसकी मेहनत करना है, और इसकी दावत देना है, और इसके तकाजों को सीखना है, और इसके तकाजों को पूरा करना है। ये तो बताते वही, इसके पहले अल्फाज सही करो, उसके बाद उसका मतलब समझो, उसके बाद उसके अंदर पाया जाने वाला जो यकीन है उस यकीन को मुजाकरा करके मजबूत बनाओ और इसकी कसरत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करने का एक तर्जुमा निजामुद्दीन ने पढ़ा, मैंने नासा साहब का उन्होंने कहा तुमसे सुना, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात और सिफात का तज़किरा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कसरत से ये भी अपनी जगह मतलूब है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में जो मजमून है उस मजमून का तज़किरा करना, मुज़ाकरा करना, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की हिफाजत का, अल्लाह की रुबूबियत का, अल्लाह पाक की, अल्लाह तबारक व तआला की वहाबियत का, उनकी सत्तारियत का, उनकी गफारियत का, उनके इल्म का, उनकी हिकमत का, उनकी कुदरत का। जब वो हिफाजत करने पर आए तो कैसे हिफाजत करें, जब वो पकड़ने पर आए तो कैसे पकड़ लेते हैं, वो किसी की हिफाजत भी किसी के मोहताज नहीं है, वो किसी को पकड़ने में किसी के मोहताज नहीं है, जब चाहे जो चाहे जिसके साथ चाहे जैसा चाहे इज्तमाही तौर पर इंफरादी तौर पर पूरी इंसानियत के साथ कुछ अफराद के साथ किसी खास कौम के साथ उनके पास किसी किस्म की कोई कैद नहीं, वो जब चाहे करे जो चाहे करे जैसा चाहे करे जिसके साथ चाहे करे। ऐसा यकीन जब बन जाता है मेरे दोस्तों, और खुदा करे कि बन जाए, और उसी बनने के लिए हमें मेहनत करना है, तो उसका एक लाजमी नतीजा अल्लाह के रास्ते की मेहनत है, और उस मेहनत के वास्ते कुर्बानी देना है। कुर्बानी की खसूसियत है हिदायत का तालिया, आम हालात में जाना अलग है, अभी आप कारगुजारी कारगुजारी सुनाने का मकसूद ही होता है कि वो इन हालात में निकल लेंगे अपने स्पेशल असरात होंगे। देखो मस्तूरात में गए तो मस्तूरात के तासरात की नौबियत अलग है, जुकूर में लोगों में अफराद मर्दों में गए मर्दों के अंदर जमातों में जाने की नौबियत की असर होगी, और वो तो हमने अपना चिल्ला लगाया, और अगर चिल्ले से हटकर लगाएंगे रेगुलर में क्या बोलते हैं इजाफती में क्या बात बोली जाती है कि देखो तुम अपना रेगुलर टैंक लगाओगे तो तुम्हारी जात का फायदा है, लेकिन अगर तुम रेगुलर से हटके लगाओगे कुर्बानी दोगे तो तुम्हारी जात के साथ दूसरों को फायदा जब मिलेगा, दूसरों का फायदा होना हिदायत का मुतादी होना, हिदायत का दूसरे लोगों के अंदर उतरना, यह होता है कुर्बानी में। रेगुलर से आगे जब पहुंचती है बात तो फिर वो कुर्बानी पर आ जाती है, कुर्बानी होती है उसमें, जज्बात की भी कुर्बानी होती है, ताल्लुकात की भी कुर्बानी होती है, माल की भी कुर्बानी होती है, वक्त की भी कुर्बानी होती है, मसरूफियतों की कुर्बानी भी होती है, मुजाहिदा पाया जाता है, कई कई एतबारों से मुजाहिदे उसमें पाए जाते हैं। आदमी अपनी हिम्मत के बकदर जब मुजाहिदे को झेलने लगता है उसके लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह पाक आसान भी फरमाते हैं, खुशगवार भी फरमा देते हैं, मजा भी उसमें दे देते हैं, तकलीफ होना जरूरी नहीं होती मुजाहिदे के साथ, बात मुजाहिदे में हिम्मत को देखा जाता है खाली, उसके बाद तो मजा ही मजा आता है। जो लोग हमेशा लग जाते हैं और लगते ही रहते हैं, 40 दिन के बाद फिर लग गए, 4 महीने के बाद फिर लग गए, अरे भाई गिर रहा है क्या बात है, उसको कुछ मजा आ रहा होगा तभी तो गिर रहा ना, कोई चीज महसूस कर रहा है, कोई नूरानियत दिख रही है अंदर, कोई खास बात महसूस हो रही है कल्बी एतबार से, इसी वजह से उसके लिए आसान होता चला जा रहा है। हताना शानू की आदत है, अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदे की बरकत से काम के अंदर हिफाजत भी फरमाते हैं, मुजाहिदे की बरकत से काम में दिल भी लगा देते हैं, और मुजाहिदे की बरकत से अपना ताल्लुक भी नसीब फरमाते हैं, और मकसूद असली तो ताल्लुक ही है, और अगर किसी को ताल्लुक मिल गया मेरे दोस्तों तो वो तो काम हो गया, उसका मकसद तो ताल्लुक होना ही अल्लाह से, अल्लाह पाक की खास विलायत मिल जाना, अल्लाह तआला से खास ताल्लुक बन जाना, ये तो मकसूद असली है। इसलिए कहते हैं कि कुर्बानी अपनी बढ़ाना है, मुजाहिदा इजाफा करना है, और जो मुजाहिदा कर रहा है उसी से आप इजाफे की तवक्को कर सकते हैं और उसी से इजाफे की तश्कील होगी। आज जो हमें बुलाया गया है साथियों को, जो जब चिल्ला लगा कर आए इन हालात में, तो वो इस वजह से कि इन हालात में जो लोग वक्त लगा कर आए उनके मुजाहिदे की जो नूरानियत है उस नूरानियत में तश्कील आसान है, ऐसे ही लोगों के सामने तकाजा रखा जा सकता है, इन्हीं लोगों को तौफीक भी होगी और यही लोग हिम्मत भी कर सकेंगे, क्योंकि इनको अंदाजा भी हो गया है, दूसरे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता, फिर काम करके नहीं आए तो हिम्मत भी नहीं होती। जो आदमी ड्राइविंग कर रहा होता है उसी को हिम्मत होती है कि जो गलियों में कर रहा है वो हाईवे पे जा सकता है, जो गलियों में ड्राइविंग नहीं कर पा रहा तो हाईवे पे कब चढ़ेगा, नहीं चढ़ सकता हूं। तो जो कुछ कर रहा होता है उसी बंदे से ये इस बात की तवक्को की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है उसे कि हाँ ये उससे आगे भी चीज को ले सकता है। इसलिए आज हमारे सामने ये तकाजा आ रहा है मेरे दोस्तों कि हम अल्लाह ताला की फजल पर भरोसा करते हुए और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए और अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाने की मजीद तवक्को अल्लाह ताला के सामने रखते हुए अपनी तरफ से दुआ के तौर पर मिन्नत जिमाजत के तौर पर हम अपने इरादों का इजहार करें, हम अपनी नीयतों को बनाएं और ये नीयत और इरादे अल्लाह के साथ हैं। मैं अपने दिल में सोचूं, मैं दिल में इरादा करूं पहले अल्लाह से, फिल्मा पढ़ लू भाई अल्लाह, मेरे और अल्लाह के दरमियान ये बात आ जाए कि अल्लाह मैं कुछ काम हो जाए मुझसे, ले ले आप मुझसे, आप अपने दीन की खिदमत के लिए मुझे कबूल फरमा ले, जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे दोस्त, कब तक कौन जिएगा और कब ये दुनिया से चला जाएगा, कितना टाइम उसके पास है कितना टाइम उसके पास नहीं है, हालात का क्या भरोसा है कि किस तरह के हालात आ जाएंगे, अपनी सेहत का भरोसा क्या है, बाहर की दुनिया के फितनों की नौबत क्या है उसका कोई अंदाजा नहीं होता। उसने फरमाया कि फितनों की नौबत के अंदाजे से, आपके सेहत के अंदाजे से, आपके हालात के अंदाजे से, इन सब चीजों को सामने रखते हुए इस बात को का फैसला किया करो कि काम जो है ना वो जल्दी करना है। बादिरू बिलामाल समान वाले जो हदीस है, बादिर का मतलब होता है जल्दी करना, पहले मरहले में कर लेना, फैसला जल्दी कर लेना, काम जल्दी कर लेना, ताकि जो चीज पेश आ सकती है, बताना खासा कि हो सकता है मबादाबाद में वक्त ही न रहे मौका ही न रहे, इसलिए हिम्मत करना होता है कि अल्लाह के रास्ते में हमको दूर और देर के लिए जाना है, 4-4 महीने हमें लगाने हैं, 2-2 महीने लगाने हैं, 2 महीने निजामुद्दीन की तरतीब के तकाजे क्यों हों या यहाँ के मरकज के तकाजे क्यों हों या जहां के भी हों, 2 महीने का तकाजा हमारे सामने आए तो हम 2 महीने के लिए भी तैयार हैं, 4 महीने का तकाजा सामने आता है तो 4 महीने के लिए भी तैयार हैं, और 4 महीने का तकाजा फिरने का और 2 महीने का मरकज में क़याम का तकाजा 6 महीने का है उसके लिए भी हम तैयार हैं। हिम्मत की बात होती है मेरे दोस्त, माश का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, वसाइल का क्या होगा? मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की आदत यह है कि जो अल्लाह पे अल्लाह से डरेगा, वमन यतकिल्लाह यजअलहु मखरजा व यरजुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, उसको रास्ता निकलेगा और अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा ऐसी जगह से जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी होता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, अल्लाह अपने मामले तक जरूर पहुंचता है। हर चीज का क्योंकि हर चीज की तकदीर उन्होंने बनाई भी है और जिस चीज को करना होता है, कर चुके होते हैं वहां जरूर ही जाते हैं। उन्होंने इरादा कर लिया मदद करने का, मदद होगी ही होगी। इसीलिए के मनफूजात भी है कि अल्लाह की मदद के लेने का यकीनी रास्ता अल्लाह के दीन की मदद है, क्योंकि पुराने पाक में है वही अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन की अगर तुम मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इन स्वरूप फला गालिब, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। सुबह दूसरी चीजें नहीं होती, जरूरी नहीं है दूसरा कोई शख्स हो। फला गालिब में सब चीजें हैं, जो हालात का डर है ना वो तुम पे गालिब नहीं आ सकते कि अगर मैं चला गया, अगर मैंने ये कुर्बानी दी तो फला चीज का क्या होगा। फला चीज वो फला ही गालिबा है, उसी पर गालिब आ गया। फिर जिस चीज का भी तुम्हें डर है वो चीज तुम पर गालिब नहीं आ सकती अगर अल्लाह तुम्हारी मदद का फैसला फरमा दे, इरादा फरमा ले। इसलिए आदमी को अल्लाह के जाते आने पर भरोसा करना होता है और अल्लाह के जाते आने पर भरोसा सीखना होता है। नहीं है तो सीखना है तो करना है। और जितना ज्यादा भरोसे को हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह तआला की तरफ से हालात और आराम आरामदेह बना दिए जाएंगे। हत्ता के हुजूर ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर तुम पूरा ही भरोसा कर लोगे तो वो पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लो अंतुम तवक्कलून हक्का तवक्कुल वाली हदीस है ना, याद होगी कि अगर तुम्हारा भरोसा पूरा हो जाए उन पर तो बिल्कुल तुम्हारा मामला भी ऐसे ही होगा जैसे परिंदों का होता है। अपने घरों के घोंसलों से खाली पेट जाते हैं, पेट भर के आते हैं, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा जॉब करना है, कौन सी नौकरी करना है, कुछ भी नहीं। उनको जवाब कुछ नहीं करना, खाली दाने चुगने का रहता है। यही जवाब है उनका, कमा के चुकने का मसला नहीं है, वहां पे खाली चुक जाने का मसला है। उसने फरमाया कि अगर तुम पूरी उम्र नजर कर लोगे तो वो पूरा तुम्हारे को नरमी कर देंगे और जितना तुम अपने अंदर कमजोरी महसूस करोगे इजाजत है उसकी, उसके अतबार से तुम मशगूलियत भी अख्तियार कर सकते हो। मना भी नहीं किया गया उसको, लेकिन तरबीब इसकी दी गई। इसी वजह से अक्सर अंबिया इल्ला माशाल्लाह 99% दावत का काम शुरू करने के बाद अंबिया काम छोड़ देते थे, तिजारत या कोई और चीज या कोई और मशगूलियत, फिर वो नहीं करते थे। किसी ने नहीं किया उसके बाद, सिवाय दाऊद अलैहिस्सलाम के, उनके बारे में जिक्र आता है ना कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम कुर्ता बनाते थे अपनी जंग का, और ये भी जरूरी है कि वो मार्च के लिए बनाते हो, ये कि वो बनाया करते थे, वो लोहे का कुर्ता बनाने का उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फन दिया हुआ, वरना नबी दावत शुरू करने के बाद पूरी तरह उनको छोड़ देते और अल्लाह तबारक व तआला भी उनको सहूलत अता फरमा देते। इतनी ज्यादा सहूलत, इतनी ज्यादा जो जिसके लिए पसंद करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि आप बादशाह बनना चाहते हैं, बादशाह नबी बनना चाहते हैं या मिस्किन नबी बनना चाहते हैं? वो फरमा कि मैं मिस्किन नबी बनना चाहता हूँ, बादशाह नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफर को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अतरा गैर मजदूर था गैर मुमिन, ऐसा मैं तुमको दूंगा कि हिसाब भी नहीं दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो दिया गया है उसमें इसकी सराहत है कि इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये डर रहता ना कि भाई पता नहीं कब क्या इन सब नियमतों का हिसाब होगा तो क्या होगा, फरमाएंगे बगैर हिसाब नहीं होगा तुमसे ये जितना तुमको। और दिया कि भी कितना गया, सारी दुनिया के बादशाह और उसके साथ खाली इंसानों पर भी, जिन्नात पर भी, शयातीन पर भी, परिंदों पर भी, दरिंदों पर भी, चूटियों, कोई चीज उनके मामले के दुनिया में खारिज नहीं, हवा के दोष में जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने देने के लिए जाब्ता ऐसा नहीं बनाया है कि तुम किस तरह की काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया जाए। कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से असबाब बन जाएगी। अगर हम कमजोर दिल के हैं तो हमारी कमजोरी के एतबार से अल्लाह पाक एडजस्टमेंट फरमा देंगे, और अगर हम ताकतवर दिल के हैं तो हमारी ताकतवर के दिल के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के फैसले होते हैं। इसलिए नजर अक्सर अल्लाह की ज़ात आली पे सीखनी भी होती है। बड़े लोग जितने भी गुजरे हैं उन्होंने लुटा के खत्म कर दिया, आएगा कहां से ये नहीं देखते थे, खर्च कैसा कर देना है ये देखते थे। हतमा इजाजा रहमतुल्लाह को ले लो, कितनी जायदाद इनके पास था, कितना पैसा इनके पास था, कितनी जमीनें इनके पास थी, कितनी प्रॉपर्टी इनके पास थी, आखिर वक्त तक भी जब वो दिल्ली में आके रहने लगे थे, 450 से ज्यादा तो मकान के किराए इनको आते थे, 450 से ज्यादा प्रॉपर्टी के किराए इनको आते थे, क्योंकि खेत वगैरह की जो जमीन थी वो अलग थी, गाँव के गाँव उनके नाम पे थे। खर्च करने का निजाम किया, उसको उसको बना के उससे पैसे कमाने का निजाम भी बनाया इन लोगों ने, और इनका अकेले कोई मसला नहीं है। आप तब बुजुर्गान दिन की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको हर हर कदम पे मिलेगी ये बात, हर हर कदम पे मिलेगी। जितना जिसने अपने असबाब को छोड़ा उतना ज्यादा अल्लाह पाक की तरफ से असबाब बनते चले गए। धार्मिक का किस्सा आपने सुना ही होगा, धार्मिक कानपुर में पढ़ाते थे, हमेशा की नमाज भी पढ़ ली तुमने, सब पढ़ लिया तो बेटे खाना नहीं खाए। कानपुर में पढ़ाते थे, वहां मुदरिस थे, उन्होंने हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि हजरत मैं सब छोड़ छाड़ के, नौकरी छोड़ छाड़ के आना चाह रहा हूँ, खानखा में आके पढ़े रह जाना चाहता हूँ, कुछ कमाना वमाना नहीं चाहता। तो मामा नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एक साल के बाद में छोड़ के आ गए, 14 साल हो गए थे तो 14वें साल में आना चाह रहे थे, 18 बोला नहीं 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 ऐसा मत करो, तो फिर अगले साल में 13 साल हो गए थे तो 14वें साल में जो है छोड़ के आ गए। कहाँ हाजी अब्दुल्ला साहब उनके पीर थे, उनके पास आ गए, तो जब आगे छोड़ के तो हाजी साहब ने फरमाया बहुत अच्छा किया, आगे नौकरी छोड़ के आगे बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने पूछा हजरत से, अपने शेख से, कि गुज़िश्ता साल मैंने आपसे पूछा था आपने मना कर दिया, मत आओ मत छोड़ो नौकरी, और अब मैं आ गया छोड़ के नौकरी तो अफर मैं बहुत अच्छा किया। फरमाया कि जब तुमने गुज़िश्ता साल पूछा था ना तो पूछना अलामत कच्चेपन की है, जब तुमने पूछा था ना मुझसे तो पूछना अलामत कच्चेपन की है, वो उसमें मसलियत नहीं थी इसलिए मैंने मना किया, बगल पूछे कि तुम आ गए ये अलामत पक्केपन की है, वो पक्के आदमी को कहीं परेशानी, आगे बहुत अच्छा किया। उसके बाद एक जुमला में सुनाता हूँ हजरत हानी रहमतुल्लाह का, उससे अंदाजा हो जाएगा। हजरत हानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसमें मैं मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, वो गुलू नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले बगैर कमाई के वक्त में कि अगर मैं सोने की ईंटों से घर बनाना चाहता तो बना लेता। हथानी के मनफूजत में फरमाया कि सोने की ईंटों से अगर मैं घर बनाना चाहता मैं मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ इसमें, ये फरमाया, ये बिल्कुल वाकई बात है कि मैं ऐसा कर सकता था, इतने अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए, मैं खुद ही ले नहीं लेता था, मुझे भी चाहिए। अल्लाह वालों के साथ ऐसे मामले हुए, ये जो निजामुद्दीन की जो तरतीब है, हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के हालात, हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के हालात, उनके ऊपर के बुजुर्गों के हालात, मुफ्ती मजहर साहब के हालात, ऊपर एक मुफ्ती मजहर के नाम तो बड़े अजीब गरीब बुजुर्ग थे, मुफ्ती मुजफ्फर साहब बड़े अजीब गरीब बुजुर्ग गुजरे, उनके ऊपर के हालात, इनके ही खानदान के थे वो, तो ऐसे ही जो है ना बेशुमार औलिया अल्लाह और बुजुर्गों के जिनके हालात आपको मिलेंगे, दुआत के दाइयों के हालात मिलेंगे, जो औलिया अल्लाह गुजरे हैं ना, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, फलां 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 अरब के, आजम के, इधर के मावराओं नहर, गैर मावराओं नहर के, खुरासान, समरकंद, बुखारा के, इन औलिया अल्लाह की जिंदगी के वाकयात भरे हुए हैं इस बात से कि जितना जितना जिसने जितना ज्यादा अल्लाह पे नजर टिकाई उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उतना फारिग किया, उतना उसको आसुदा किया, उतना उसको आराम पहुंचाया, उसका उतना उसको बेफिक्र किया, उतने उसके साथ में फुतूहात का दरवाजा अल्लाह पाक ने खोल दिया। ये तो सीखने की चीज होती है मेरे दोस्तों भाई, हम कमजोर हैं, हमको इस बात की तरकीब नहीं दी जाएगी कि तुम भी सब छोड़ छाड़ के बीवी बच्चों की फिक्र किए बगैर निकल जाना, जाहिर है कि हमारा पूछना या हमारा ये सोचना खुद हमारे कच्चेपन की अलामत है, चौथा आदमी के साथ हमारा इंसान पक्का आदमी तो ऐसा करता भी नहीं। तो मगर यह कि जितना हम सीखेंगे, हम अपने बड़ों को देखेंगे, अपने बड़ों को सुनेंगे, उनकी जिंदगी के हालात में गौर फिक्र करेंगे, अलानिया हम इस बात को मुशाहिदा कर सकते हैं कि उनके पास होता कुछ भी नहीं था मगर किसी चीज की कमी नहीं होती थी, और हजारों लाखों बंदेगा ने खुदा को खिलाते पिलाते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास में लंगर था जिसमें रोजाना 100 kg नमक खर्च होता था, रोजाना की 100 kg का नमक उसका खर्चा था, और आमदनी क्या है, आमदनी यही है, उनसे पूछा तुम्हारी आमदनी क्या है, तो मेरी मेरी यही आमदनी है, मैं लोगों पे खर्च कर देता हूँ, वो आता रहता है। बेशुमार ऐसे लोगों के वाकयात हैं, इसलिए अपने मौजूदा हालात में परेशानियों में ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, नजर अल्लाह पे सीखना है। ये नियत बनाओ कि एक दिन अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी नजर दे दे, मुझे भी ऐसा भरोसा दे दे, मुझे भी ऐसा तवक्कुल दे दे, मुझ में भी ऐसा इखलास आ जाए, मेरी नजर में भी मेरी नजर भी मासूम अल्लाह से हट जाए, मेरी नजर भी अल्लाह पर जम जाए और मेरे को भी अल्लाह पाक ऐसा खास बना दे, ऐसा एहसास मुझे नसीब हो जाए, मेरी दुआ में ऐसा असर आ जाए और मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दरवाजे खोल दे, हम अल्लाह की ज़ात आली पे भरोसा करके जब कदम उठाने लगेंगे अल्लाह पाक चुन भी लेंगे, उनकी तरफ से इस्तेमालियत हो जाएगी, इस्तेफाइयत हो जाएगी, तौफीक हो जाएगी। इसलिए ये जो तकाजे हमारे सामने हमारे बड़ों की तरफ से आ रहे हैं, इन तकाजों में आदमी को थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ना है। ये मौका होता है आदमी की हिम्मत को अल्लाह पाक देखते हैं, अल्लाह भी देखता है और मखलूक की नजर में भी हिम्मत ही का वजन है। हिम्मत बुलंदार के पेश खुदा वफल बाशत बकर हिम्मत है तू एतबार है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम्हारी तुम्हारा वजन अल्लाह की नजर में तुम्हारी हिम्मत के एतबार से, तुम्हारी हाइट के एतबार से नहीं है, तुम्हारे मानिए के एतबार से नहीं है, तुम्हारी शक्ल सूरत के एतबार से नहीं है, तुम्हारी सेहत के एतबार से नहीं है। हिम्मत बुलंदार के पेश खुदा वफल बाशत बकर हिम्मत है तू एतबार है, तुम्हारा एतबार अल्लाह की नजर में भी मखलूक की नजर में भी तुम्हारे हौसले और हिम्मत के साथ है। इस वजह से जो तकाजे हमारे सामने आए मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया का तकाजा है। अब ये पेंडेमिक जो है, ये बीमारी जो है ना, इसने कितनों का ईमान खराब और मुतासिर किया है, कम से कम उनको सही ईमान की बात तो पहुंचाना है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफहूम उनको पहुंचाना है। सारी दुनिया मुतासिर हो गई और एक चीज से इतनी मुतासिर हो गई और हर रोज पता नहीं कैसे कैसे फितने आने वाले हैं, ईमान को खराब करने वाले, दीन को खराब करने वाले किस किस रास्ते से आएंगे, कितनी मेहनत की जरूरत है। आज उम्मत जरूरतमंद है इस बात की कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें सफर करें, ज्यादा से ज्यादा खुरूज करें, दूर से दूर तक जाएं, जजीरों में जाएं, देहातों में जाएं, मुख्तलिफ दूसरी जुबानों में बोलने वालों में जाएं, दूसरी कंट्रीज में जाएं, अपने इलाकों में काम करें, अपने खानदान वालों में भी काम करें, अपनों में, परायों में, सब जगहों पर इस बात को पहुंचाने के वास्ते मेरे दोस्तों हिम्मत करने की जरूरत है। जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं बेदरेक लगाए अल्लाह के नाम पे नजर भरोसा करके, जो अल्लाह ने जो खर्च करोगे पलट के दे दूंगा, युखरिजु करके पलटा के दे देंगे, जो तुम खर्च करोगे पलटा के दे दूंगा। जब अल्लाह फरमा रहे थे मेरे दोस्तों अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है, अल्लाह से ज्यादा सच्चा नहीं हो सकता, कौन अस्तगफिर अल्लाह, अल्लाह जरूर हमें वापस कर देगा और बरकत के साथ वापस करेगा, इजाफा होगा इंशाल्लाह ताला, और हमारी जान में भी होगा, हमारी औलाद में भी होगा, हमारी सेहत में बरकत होगी, हालात अल्लाह पाक माफिक बनाएंगे। वो तो हम चूंकि जैसे जैसे कुर्बानी देनी है वैसा नहीं दे पाते, इस वजह से हमारे हालात में भी कोई ज्यादा हम फर्क अपने अंदर महसूस नहीं करते, मगर फिर भी बहुत महसूस करते हैं। हम अपने पिछले हालात को अगर देखें, अपनी जमात में वक्त लगाना शुरू करने से पहले के हालात में और इस वक्त के हालात में, तो आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जैसे बच्चे का बड़ा होना दिखता नहीं ना, मगर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते एक दिन बड़ा हो जाता है, ऐसे हालात जो आदमी के अंदर बदलते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन मुआजना लंबे टाइम से जब होता है तो पता चल जाता है वो उस वक्त और इस वक्त, उस वक्त की हालत मेरी, इस वक्त की हालत मेरी, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, जमीन आसमान का फर्क आपको मिल जाएगा। तो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला दुनियावी एतबार से भी नवाजेंगे, दीनी एतबार से भी नवाजेंगे। जरूरत को सामने रखना है, तकाजों को सामने रखना है, हुक्म को सामने रखना है, अल्लाह पाक का हुक्म है, ताल्लुक को सामने रखना है, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक है, अल्लाह से मोहब्बत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये भी फरमा दिया अपने ताल्लुक की वजह से कि ये मेरा रास्ता है, इधर ये मेरा रास्ता है, सीधा इधर चले आ जाओ। उलमा ने फरमाया यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने सिराती फरमाया ताकि अहले मोहब्बत को एक लपक आ जाए अंदर से, अहले मोहब्बत को शौक आ जाए कि ना फरमाए मेरा है, इतना ये मेरा रास्ता है। जब उनका ये रास्ता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रास्ता है, तो कितने शौक से मेरे दोस्तों बढ़ने की जरूरत है। इसलिए पूरी दुनिया में जाने के इरादे करो और जैसे तकाजे आए वैसे जाएंगे ऐसे इरादे करो, और इस मुल्क के अंदर पूरे मुल्क में फिरने के इरादे करो। तो चार चार महीने का तकादा जो 40 दिन लगा कर आए हुए हैं, इनसे यह है कि वो हिम्मत करके लिखा लें अपने चार महीने, पीछे ना हटे, अल्लाह में भरोसा करें। और दो दो महीने के जो तकादे जिस एतबार से भी हमारे बड़े हमारे सामने रखेंगे, उन तकादों के एतबार से दो महीने के लिए भी इरादा करो, चार महीने के लिए भी करो, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको हिम्मत और तौफीक अता करेगा, हर साथी भी गाएगा इंशाअल्लाह।
सारे साथी इत्मीनान से बैठे हैं, बहुत अच्छी बात, और माशाल्लाह जिस तरह मजमा बैठा हुआ है ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि देखो भाई काम तरतीब से अगर होगा तो ख़त्म हो जाएगा, वरना क्या होगा कि हम जोश में आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे और कोई काम नहीं होगा। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह जिसके दिल में अल्लाह पाक डाल रहा है, जो तैयार है फरवरी मार्च अप्रैल में, वो खड़े हो जाए चार महीने के लिए, इंशाल्लाह एक तकाजा है कि चार महीने के लिए कौन तैयार है। फरवरी तक जो महीना चल रहा है, जनवरी जा चुका है, तो फरवरी और मार्च और अप्रैल बताओ भाई ये तीन महीनों, और अपने साथी जो है वो भी पेन और पेंसिल ले रहे भाई, सब साथी लिखा करें, सब आदत डाले इसकी। जी भाई बोले, सॉरी फिरोज आप पहले खड़े हुए, बोलिए जी, बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कैश तैयार है, ठीक है, बोलो भाई, सफर सही,
अल्लाह जान में, माल में, इज्जत में, वजीफे में बरकत عطا
फरमा, मार्च में,
आराम
जी बोले,
अप्रैल में,
जा में, माशाल्लाह, अप्रैल में इंशाल्लाह बोलते जाए,
नूरुद्दीन जा में इंशाल्लाह, मार्च
में, नूरुद्दीन जो है मार्च में, जी इकराम
अप्रैल, अच्छा
इकराम अप्रैल, और बोले भाई कुल्स मैं ओके, लेट मी फिनिश दिस अप्रैल, देन विल डू इट इंशाल्लाह। जी बोले, हां
नवंबर,
कौन सा नवंबर,
अभी
बैठो ओके जी, हां अप्रैल हाफिज,
अल्लाह पाक आसान हो,
हाफिज बेटा अप्रैल
मत करो दोस्तों, देखो हिम्मत ही असल है,
बोले मैं
अल्लाह आसान करेगा
जी,
हां
20 फरवरी, 20 फरवरी जावेद भाई क्या जैसे मुफ्ती साहब ने बयान में कहा, तो ये अल्लाह की तरफ से निशानी है मोहब्बत की, अगर दिल में आ रहा है, हालात कैसे है, मशवरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो अलग चीज है, पहले तो हम अपने जज्बात जो दिल में अल्लाह डाल रहे हैं उस पर खड़े हो जाए। देखो 40 दिन जो लगा लिए, आगे के तकाजे क्या है, अब चार महीने इस मुल्क में फिरना है, अभी अमीर साहब ने जो कारगुजारी ली, पूरा वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, साउथ, यू नो हर जगह पे जमातों को भेजना है, पूरा अमरीका सो रहा है, तो अगर चार महीने की जितनी जल्दी जमाते जाएंगी उतना हमारा फायदा है, तो बताए भाई बिफोर आई मूव, ठीक है, अब कौन सा है इसके बाद, मई जून जुलाई, चलो भाई मई वाले खड़े जाओ जी, बोलो जून, नाम बोलते जाओ और किसमें, अच्छा जून में, जून ठीक है, बोलो बेटा नाम बोलो, सईदुल्लाह विकास मिलवाकी एंड यूसे मे, जी बाबा
मे मोहम्मद रफीक,
मोहम्मद रफीक, मस्जिद बोलो
मिलवाकी मुबारक,
मिलवाकी
मस्जिद मुबारक,
ओके ठीक है, मिलवाकी इज इनफ, ओके
मार्च को मसूरा 40 डे,
मार्च में
जी,
मार्च में मसूरा भी है, ठीक है ओके इंशाल्लाह जी, बोलते जाए,
अच्छा आधे जुलाई में 4 months,
जुलाई में
4 months,
ओके इंशाल्लाह, बोले जल्दी बोले,
जून में 4 months,
नाम बोलो पहले,
मोहम्मद इस्माइल,
मोहम्मद इस्माइल अलफला, कब बोला आपने,
जून,
जून ठीक है जी, बोले जी जुलाई में, ओके जी बोले, नेक्स्ट बोले हिशाम जुलाई में, जी बोले नाम बोलो पहले, मोहम्मद कासिम, कौन सी मस्जिद है, अल्फला, कब का जुलाई में, ठीक है हुआ इंशाल्लाह, जुलाई में अल्फला, हाँ चलो मदरसा लिख दिया आगे अल्फला मदरसा, चलो आप बोलो जाहिर, जुलाई में चार नहीं है, ठीक है जी, साबिर साबिर मई में, ठीक है बोले भाई, आरिफ जुलाई में, ठीक है वो ठीक है, मस्तुराद भी कर लेंगे इंशाल्लाह जी, बोले तैयार क्या है, मुतैयो यार कब भाई, कब मार्च, मुतैयो इस मार्च, माशाल्लाह दारुल ईमान, इतनी दूर खरीब आके बोलते भाई, अब्दुल लतीफ क्या बोल रहे हो, जुलाई में चार महीने सुफा, जी बोलो गांव बोलो यार अपना, क्या बोल रहे हो? जुलाई में, ठीक है ठीक है जी। दूसरा बोलो भाई, क्या दिसंबर वाला बैठ जाए जो बोला है वो समर या दिसंबर? समर में महीना बोलो ना यार, दिसंबर बोला हमने सुना जी। आदर भाई, यस यस यस, व्हाट इज द इंटेंशन ब्रदर? नाम भी बोल दो मुबारक होने के लिए। ठीक है, जिया या शफीकुर रहमान, बिकॉज वी आर डूइंग तश्कील हियर विद द नेम ब्रदर्स, नॉट द मस्जिद राइट नाउ। ओके जी बता, नाम पहले बोलो। हाफिज अथर, सी आई नो द नेम बट एवरीबॉडी शुड नो द नेम ईच अदर, सो दे विल मेक दुआ। जी बोलो, जुलाई फोर मंथ, जुलाई फोर मंथ इंशाल्लाह शरिया बोल। जी बोलो, नाम नेम फर्स्ट, उस्मान विश्व से मिलवाकी, व्हाट मार्च, यू सेड मार्च फोर मंथ बिकॉज दिस तश्कील इज फोर मंथ राइट नाउ। जी बता, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज विच मस्जिद? अनफला, अनफला फोर मंथ, किसमें का आपने मार्च में? बोलो अफसार, जुलाई, ठीक है हुआ इंशाल्लाह। जी हाफिज सुलेमान, मे में कहा आपने राइट? जी ठीक है, बोलते हैं अप्रैल मई जून आई टोल्ड यू राइट, अप्रैल मई जून, एनी वन आर मेरा तू नहीं दिसंबर तक जाऊंगा जी। अच्छा, क्या नाम बोला आपने? ठीक है, अहमद खालिद, ठीक है। और हुआ इंशाल्लाह, then go to the June, April, May, June, right? July, August, September. Who's ready for that? Bolo. Huh? Rizwan. Bolo. Kind? August, May. 4 months of living is not needed because all 4 months of living is not needed. Yes, bolo. Okay. Amjad. When? August, May? August, May, Shambar. जी हिसाब बोले, हिसाब अगस्त में। जी और बोले भाई, जी हुआ जी बॉस, बॉस अगस्त में, ठीक है अगस्त में जामिया। और बोले भाई, बस इतने ही नाम है इसमें। कौन से महीने थे? जुलाई अगस्त सितंबर में, बस 4-5 names only. So what left then? October, November, December. This is आगे नहीं जाएगी गाड़ी। October, November, December. लिखवा दो अभी। मौका है, जो कुछ भी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। एक second. बोलो। कब? November, small November, ठीक है। बोले आप बोले सवाली। अब तो लतीफ कौन सी मस्जिद है? कब बोल रहे हैं? अरे दिसंबर, ठीक है ठीक है। जी बोलो, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद नवंबर, हाफी, ठीक है बोले सॉरी सलमान नवंबर में, बस मस्जिद कौन सी है? दारुल ईमान, ठीक है जी। फैसल, फैसल अक्टूबर में, जी जामिया, जी बिल्कुल सही बोलो भाई हारून हाँ दिसंबर विच इज अफल राइट बोलो नहीं तुम भी बोलो कौन है मेरे महमूद क्या बोलो महमूद यार अड्डा बोलो नवंबर नवंबर दारू से नाम जी बोलो सदाकत सदाकत नवंबर भाई इतना बोलो इतना खर्चा दारो ईमान अच्छा दो पेज तो भर गए ओके बोलो नूरुल अमीन बोलो बोलो अप्रैल में मिलवा दी ठीक है बहुत अच्छा है जी बोलो सॉरी अब्दुल अजीम नवंबर लिखते जाओ ओके हाँ अशफाक भाई अशफाक भाई ये वो लोग हैं जो अभी वक्त लगा के खत्म किया है कब माशाल्लाह फिर दोबारा नियत कर रहे हैं नवंबर में फोर मंथ अभी अभी वक्त लगा के जी बोलिए जुलाई डैलस ठीक है और बोलो भाई क्या भाई हैदर भाई क्या बोल रहे हो हैदर भाई माशाल्लाह ही जस्ट फिनिश हिज टाइम 40 डेज नवंबर ठीक है और कौन है इसके बाद सब फोर मंथ भाई 40 की कोई बात नहीं भाई इब्राहिम अक्टूबर भाई ये तश्कील फोर मंथ की हो रही है 40 दिन की भी हो रही है ओके बोलो भाई हाँ दिसंबर दिसंबर बोलो यार ठीक है बोलो जी अनिस भाई क्या सोच रहे हो नवंबर अच्छा नवंबर में जामिया बोलो बोलते जाओ कौन है इरफान नवंबर में जुबैर नवंबर जी बोलते जाओ शोएब क्या बोल रहे हो जी सितंबर यार मैं उमर क्या बोल रहा हूँ उमर इन जून जामिया बहुत सारे भाई एजाज क्या बोल रहा हूँ एजाज जून में लगाएंगे ठीक है बहुत अच्छा है और बोलो भाई चौधरी क्या बोल रहा हूँ अप्रैल में जमात बना रहा हूँ अप्रैल में जामिया और कोई है कौन सा प्रॉब्लम अच्छा भाई भाई ब्रदर्स दोस्त ब्रदर इन द बैक लेकिन कब क्लोज नहीं पे करीब आए तो भाई भाई ब्रदर्स हु एवर सिटिंग इन द बैक दे कैन कम फॉरवर्ड इन द सुनो भाई ब्रदर्स आई कैन नॉट से मोर देन दैट ये स्पीकर इससे ज्यादा तो आगे नहीं बोल रहा इसकी आवाज तो बहुत नहीं ये लोग 30 साल से भुगत रहे हैं आज नया नहीं है 30 साल से जानते हैं ये सारा पुराने अच्छा भाई बात सुनो I'll translate also if you don't understand but first basically I got a name, mashallah, 3 pages full, 4 pages, okay? And I write it myself. Nobody helped me. Okay, these brothers also writing, so we will compare our notes.
Now the question is this, the brothers who's going in December, November, October, September, June, July, you made an intention because Mufti Sahib gave a bayan mashallah today. But he's not giving every week bayan. Okay? So what is going to happen, my brothers? What is the plan we have till we going in the path of Allah? What are we going to do? Batao bhai. बताओ भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये मजमा जो है बहुत सेलेक्टिव है, ओके, एंड आई नो वी गोइंग टू टेक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. द क्वेश्चन इज दिस कि व्हेनेवर यू आर गोइंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह इन बिटवीन टाइम व्हाट यू गोइंग टू डू टू कीप अप द ईमान. जो मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि ईमान की बातें करो, जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह का, जिससे तो ये क्या करना होगा. तो उसके लिए क्या है, मुफ्ती साहब ने अपने बयान में दो तीन दफा इस बात को कहा कि जो तफाजा, जो नॉर्मल रूटीन है, उससे बढ़ के कुर्बानी देनी होगी. ठीक है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि कौन तैयार है, जब तक वो चार महीने अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहा है, एक वीकेंड के बजाय दो वीकेंड अल्लाह के रास्ते में देगा. दो वीकेंड देगा. अब तक हम एक वीकेंड देते थे अपनी मस्जिद के साथ में, एक मरकज के तकाजे पे पूरे शिकागो में, ग्रेटर शिकागो में, सबब में और अपने हल्के में फिरना है, उसके लिए एक्स्ट्रा तीन दिन के लिए कौन कौन तैयार है? खड़ों के नाम बताए, सबके नाम मेरे पास लिखे हुए, तुम नाम बोलते जाओ. तो अजीम भाई, तो आप पहले नाम ही नहीं लिखवाए, लिखो अजीम भाई नाम पहले लिखाओ. देखो मैंने सबको देखा हुआ है, जितने भी नाम है. अजीम भाई क्या पहले आप बताओ, नियत बताओ. अच्छा, अजीम भाई का नाम सॉरी मेरे पास नहीं था. अप्रैल में तैयार है, तो अजीम भाई तैयार है इंशाल्लाह एक वीकेंड एक्स्ट्रा देने में. मशवरे से डिसाइड कर लेंगे जो भी होगा. ठीक है, बताओ भाई.
इकराम
भाई तैयार है, ठीक है इंशाल्लाह.
मार्च में 10 दिन, अप्रैल में 10 दिन, मई में 10 दिन.
नहीं, अभी हम एक एक्स्ट्रा वीकेंड की बात कर रहे हैं बस, जो इतफाक है उसमें चलो. ओके, हर महीना एक एक्स्ट्रा वीकेंड देना है. इकराम है, उस्मान, उमर है, और ठीक है पूरी एक जमात है. लिख लो. अब इसके बाद बताओ कौन तैयार है भाई. Whoever is ready till your time will come for 4 months, what do you want to do the extra effort? So one extra effort is जमात तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ जो इंडिविजुअल साथी बैठे हैं इनके दिलों में तो पहले आए कि they want to keep an extra weekend. भाई 4 महीने तक तुम दवाला के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो, तो तुम महीने में एक एक्स्ट्रा वीकेंड नहीं कर सकते? बताओ भाई कौन कौन तैयार है, हाथ उठा दो. चलो पहले हमें सबको दिखा दो, अल्लाह भी देख रहे हैं कि कौन कौन एक्स्ट्रा वीकेंड के लिए तैयार है. एवरीबॉडी इज रेडी, आई डोंट हैव टू राइट इट डाउन अगेन बिकॉज सब लोग तैयार है ना. तो नाउ यू डू मशवरा विद योर मस्जिद. दारुल ईमान डू द मशवरा इन दारुल ईमान. बिलवाकी ब्रदर विल डू इट देयर. एवरी डिस्प्ले ब्रदर विल डू इट देयर. दारुस सलाम, शामर ब्रदर्स, एवरीबॉडी शुड मेक द तरतीब. And they will tell us in Wednesday. Wednesday they will tell us ke who's going to go in which weekend from their masjid. We will ask. भाई देखो काम जब ही होगा जब हम उसकी accountability लेंगे. अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई काम job पे करता है. अगर boss ही नहीं पूछेगा तुम project करो मैं तुमसे एक साल नहीं पूछूंगा तो कोई काम करेगा? तो काम जब ही होता है. स्कूल में होमवर्क बच्चे कब करते हैं? जब मास्टर पूछता है. तो ऐसे ही यहाँ पर वेडनेसडे को पूछा जाएगा कि आपने नाम सबके लिखे हुए मेरे पास, तो भाई आपने जो नियत किया उस पर क्या अमल किया और कौन सा वीकेंड. हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, वी नॉट फोर्सिंग यू. वन वीकेंड यू स्पेंड विद योर मस्जिद एंड वन वीकेंड यू स्पेंड विद द तकाजा ऑफ योर मरकज. ये दिस इज अ सिंपल तश्कील, बहुत आसान तश्कील कर रहे हैं. ये नहीं अभी 10 दिन की हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 10 दिन के लिए 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे. हम चाहते हैं 4 महीने के जितने भी साथी इंक्लूडिंग माइस्टर, इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द निकलने वाला हूँ, मार्च अप्रैल में निकल जाएंगे इंशाल्लाह. तो उसके लिए ये है कि सारे साथी इसकी तरतीब बना लें कि भाई इसके नाम लिखने की जरूरत है. ठीक है ना भाई? सो भाई कौन कौन जिम्मेदारी लेता है अपनी अपनी मस्जिदों की? शाहबाग की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप दारुसलाम की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप शरिया की ले रहे हैं, आप रहमत की ले रहे हैं, आप मिलवाकी की ले रहे हैं, आप जो है राज को भी दे रहे हैं माशाल्लाह, और दारुल ईमान ग्लेंडर हाइट माशाल्लाह, बोरिंग ब्रो बिला पार्क, तो माशाल्लाह सब मस्जिद है, और एमबीसी डिस्प्ले भी ले लो यार, ठीक है तो डिस्प्ले भी ले लिया, सब ने ले लिया, ये कौन सी बार? हाँ ये मदरसा, मदरसा अलफला, अलफला का कोई नहीं है, अलफला वाले भी ले लो जिम्मेदारी, ठीक है। So now you will tell us in the coming inshallah Wednesday ke what you made a tarteef for the extra effort. ठीक है, जाने वाले भी तैयार है सबसे ये इंशाल्लाह, ठीक है मिस्टर। देखो by saying me, I'm in very difficult position myself. Ke, you know, we don't have any choice. If we want to boost our iman, then we have to be the environment. अगर हम इस environment में आज नहीं होते, तो हमारे जज्बात कैसे बनते? It's a very simple thing. तो जो जो सैटरडे और वेडनेसडे है, इसमें ये साथी चार महीने के जो इरादा कर रहे हैं, इनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इनको तो हर हाल में आना है इंशाल्लाह, और अपने साथ वह को भी लेके आना है। ओनली थिंग ये है कि भाई किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, तो वो बता दे कि भाई मैं नहीं आ रहा, मेरी भी मिस्टेक है, मैं नहीं बताता हूँ बाजा। तो ये है कि आप बता दें कि भाई आपके साथ इमरजेंसी है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हमको हर हाल में आना है, क्योंकि अगर हम सब रहेंगे तो मशवरा होगा और फिर उसमें नेक्स्ट जो है तरतीब बनेगी। क्योंकि कितनी जमातें, मैं एक मुफ्ती साहब ने कह दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं वो कहते हुए डर भी ना हूं कि ये बात आप लोगों को बता दूं कि जनवरी से जब से पेंडेमिक हुआ है अब तक कंटिन्यूअस जमात चल रही है, कोई जमात ब्रेक नहीं हुई, एक जमात खत्म नहीं होती, दूसरी जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है, और चार महीने के साथियों ने लगाया इसमें पेंडेमिक। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जनवरी से लेकर के जनवरी खत्म हुआ है और पूरे 12 महीने मुस्तकिल जमात शिकागो में चल रही है और पूरे अमेरिका में यहां से जा रही है। तो ये अल्लाह कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, अल्लाह पाक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब इसका इरादा करते हैं, ठीक है, दुआ करना है, ठीक है।
हमारे दोस्त अहबाब के लिए आसान फरमाइए, हमारी औलादों के लिए आसान फरमाइए,
ہمارے متعلقین کے لیے آسان فرمائیے اور پوری امت کو اللہ کی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے اللہ خوف کو دور فرما دیجیے، یا اللہ امن کے سایہ فرما دیجیے، اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، خاص طور پر جب بیماری کا چلن اس وقت ہے یا اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ بیماری سے بھی حفاظت فرمائیے اور بیماری سے بھی حفاظت فرمائیے، ایمان کے خراب ہونے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائیے، جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، جو ساتھی جا کے آ چکے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیے، اور جنہوں نے عزائم اور ارادے کیے ہیں اپنے فضل کرم سے ان کو آسان فرمائیے، یا اللہ آپ ہی کے چاہنے سے ہوگا، آپ جس کو توفیق دینے مسئلہ کر سکتا ہے، اے اللہ آپ ہی کے مولا کریم توفیق دینے سے کوئی بندہ حرکت کر سکتا ہے، کوئی بندے کا قدم اٹھ سکتا ہے، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم تمام کو قبول فرمائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر ایمان کی دولت سے اے اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی نفوس کا ترقیہ فرمائیے، ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا بنا دیجیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل کرم سے نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
Hey, announcement is very important. Listen carefully.